नमस्कार भारत, 26 सितंबर दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फतल। अमेरिका में सबकी निगाहें डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन के बीच होने वाली पहली बहस पर।
हिलेरी क्लिंटन इज ए वीक एंड इनएफेक्टिव पर्सन एंड आई विल टेल यू इफ यू चूज डोनाल्ड ट्रंप These problems are going to go away far, far greater than anybody would think. Believe me.
पुणे के मराठा मार्च में लाखों लोगों की शिरकत।
हमारी मांग इतनी है कि हमें मराठा आरक्षण मिले और जो शिक्षण लेते हैं या जहां पे भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाते हैं वहां पे भी हमें आरक्षण मिल जाए।
होगी वसतुल्ला खां की डायरी और खेल और खिलाड़ी भी, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों के प्रचार के दौरान कई बार एक दूसरे पर आरोप लगा चुके रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलेरी क्लिंटन पहली बार आमने सामने होंगे। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार ट्रंप और हिलेरी न्यूयॉर्क में होने वाली एक टीवी बहस में हिस्सा लेंगे, जिसमें वे देश से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। स्वीडन की पुलिस का कहना है कि माल्मो शहर में गोलीबारी की एक घटना में 4 लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस का कहना है कि स्कूटर पर कार का पीछा कर रहे बंदूकधारियों ने कार पर गोलियां चलाई हैं। घटना में 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें से 3 को मामूली चोटें आई हैं, जबकि एक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस इसे हत्या का प्रयास मानकर इस गोलीबारी की जांच कर रही है। माल्मो में मौजूद संवाददाताओं के अनुसार बीते एक दशक में शहर में गोलीबारी के मामले बढ़े हैं, जिनमें अधिकतर मामले विरोधी गुटों के बीच झड़पों से जुड़े हुए हैं। सोमालिया के विदेश मंत्री अब्देसलाम हादलिए ने कहा है कि सोमाली सेना और अफ्रीकी संघ के शांति सेना के संयोजित सैन्य कार्रवाई ने इस्लामी चरमपंथी समूह अल शबाब को हरा दिया है। उन्होंने कहा कि अब देश के 10% से कम हिस्से में अल शबाब का कब्जा है और हाल के महीनों में इसके कई नेता मारे गए हैं। उन्होंने कहा,
With the support of our brave National Security Services and AMISOM, we have militarily
हमारे बहादुर राष्ट्रीय सुरक्षा सेना और सोमालिया में अफ्रीकी संघ की सेना की मदद से हमने सैन्य कार्रवाई में उस बुराई को खत्म कर दिया है जिसे अल शबाब कहते हैं। पिछले 4 सालों में सोमालिया के सैनिकों और अफ्रीकी संघ के सैनिकों ने देश में कई अहम कस्बों और शहरों पर दोबारा कब्जा किया है। हाल के महीनों में उनके कई अहम नेता मारे गए हैं और सोमालिया के लोगों ने उनकी हिंसक विचारधारा को नकारा है। ये थे सोमालिया के विदेश मंत्री अब्देसलाम हादलिए के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया में जारी युद्ध पर चर्चा के लिए हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में अमेरिका ने रूस पर सीरिया में की जा रही कार्रवाई के बारे में गलत जानकारी देने के आरोप लगाए हैं। संयुक्त राष्ट्र के लिए अमेरिकी राजदूत सैमंथा पावर ने कहा कि सीरिया में रूस की कार्रवाई चरमपंथ विरोधी लड़ाई नहीं बल्कि बर्बरता है। इसके जवाब में रूसी राजदूत विटाली चुरकिन ने कहा कि सीरिया में शांति बहाल करना लगभग असंभव काम था। उन्होंने हथियारबंद विद्रोही गुटों पर हाल में लागू हुए संघर्ष विराम को तोड़ने का आरोप लगाया है। इधर सीरियाई कार्यकर्ताओं ने कहा है कि अलेपो में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में बीते एक सप्ताह से चल रहे सैन्य अभियान में 200 से अधिक आम नागरिक मारे गए हैं। सीरिया पर नजर रखने वाली ब्रिटेन संस्था ने कहा है कि रविवार को इन हमलों में 26 लोगों की मौत हुई है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में, अभिवादन स्वीकार करके रेहान फतल का। शुरुआत करते हैं अमेरिका से। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव मुहिम में आज रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी हिलेरी क्लिंटन पहली बार आमने सामने टेलीविजन पर बहस करेंगे। इस बहस को देखने के लिए अमेरिकी लोगों में काफ़ी दिलचस्पी है। एक ताज़ा सर्वेक्षण के अनुसार दोनों प्रतिद्वंदियों के बीच कांटे की टक्कर भी है। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
न्यूयॉर्क के हॉफ्स्ट्रा विश्वविद्यालय में होने वाली इस टीवी बहस से एक दिन पहले एक नए सर्वेक्षण के अनुसार डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सिर्फ 2 अंकों की बढ़त हासिल है। हिलेरी क्लिंटन को 49% वोटरों का समर्थन है तो डोनाल्ड ट्रंप को 47% लोग समर्थन दे रहे हैं। पिछले महीने हिलेरी क्लिंटन 8 अंकों से बढ़त बनाए हुए थी, लेकिन अब इस चुनाव में कांटे की टक्कर है। और इसीलिए इस टीवी डिबेट में अमरीकी लोगों की बहुत दिलचस्पी बढ़ी है। इस बहस का टेलीविजन पर सीधा प्रसारण किया जाएगा और एक अंदाजे के मुताबिक करीब 10 करोड़ लोग इसे देखेंगे। कहा यह जा रहा है कि टीवी डिबेट देखने वालों की ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या होगी। 90 मिनट की इस टीवी बहस के लिए क्लिंटन और ट्रंप दोनों जमकर तैयारियां कर रहे हैं और एक दूसरे को चित करने के लिए एक दूसरे की खामियों पर हमला करने की तैयारी में लगे हैं। डिबेट से दो दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इस डिबेट को यह कहकर और दिलचस्प बना दिया कि वो सोमवार को होने वाली पहली बहस में बिल क्लिंटन की कथित पूर्व प्रेमिका जेनिफर फ्लावर्स को पहली पंक्ति में बैठने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं और जेनिफर फ्लावर्स ने भी ट्वीट किया कि वो इस बहस में ट्रंप के मेहमान के रूप में शामिल होंगी। सन 1992 में जेनिफर फ्लावर्स सुर्खियों में छा गई थी जब बिल क्लिंटन के चुनाव प्रचार के दौरान खबरें छपी थीं कि उनके क्लिंटन के साथ प्रेम संबंध थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आलोचक और अरबपति मार्क क्यूबन की टिप्पणी के जवाब में जेनिफर को पहली कतार में बैठने की बात कही। क्यूबन ने कहा था कि हिलरी क्लिंटन के चुनाव प्रचारकों ने उन्हें पहली पंक्ति की सीट दी है। हिलरी क्लिंटन कई दशकों से राजनीति से जुड़ी रही हैं और सेनेटर और अमरीकी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव अभियान में दर्जनों टीवी डिबेट भी कर चुकी हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप एक व्यवसायी हैं और सिर्फ कोई 15 महीनों से उन्होंने राजनीति करनी शुरू की है और सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी के प्राइमरी चुनाव में ही उनका डिबेट करने का अनुभव रहा है। इसके अलावा हिलरी क्लिंटन जो 4 साल अमरीका की विदेश मंत्री भी रही हैं, उन्हें विभिन्न अहम मुद्दों पर अमरीकी नीतियों की अच्छी समझ है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की अहम मुद्दों पर जानकारी को सीमित माना जाता है। लेकिन हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों को करीब 60% लोग भरोसे लायक नहीं समझते। जानकार मानते हैं कि चुनावी प्राइमरी में कई प्रतिद्वंदी होते हैं और आम चुनाव में आमने सामने डिबेट करना होता है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल भी हो सकती है। लेकिन ट्रंप अपने तीखे बयानों और कटाक्ष करने के लिए भी जाने जाते हैं, इसलिए वो एक महिला उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन के खिलाफ डिबेट में क्या रुख अपनाएंगे ये अभी कहना मुश्किल है। वैसे अपनी चुनावी मुहिम में तो डोनाल्ड ट्रंप हिलरी क्लिंटन को खरी खोटी सुनाते रहते हैं।
हिलरी क्लिंटन इज ए वीक एंड इनएफेक्टिव पर्सन एंड आई विल टेल यू इफ यू चूज डोनाल्ड ट्रंप दीज प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू गो अवे फार फार ग्रेटर देन एनीबॉडी वुड थिंक बिलीव मी।
हिलरी भी चुनावी रैलियों में ट्रंप के विवादित बयानों के जरिए ट्रंप को निशाना बनाती हैं।
That Donald Trump is what American honor looks like, and that is what we're going to stand up and defend in the face of your outrageous, disgraceful attack.
वैसे अमरीकी चुनाव में करीब 20% ऐसे अमरीकी वोटर हैं जिन्होंने फैसला नहीं किया होता है कि किसे वोट देना है, और अधिकतर वही चुनाव का नतीजा तय करते हैं। और इस टीवी डिबेट द्वारा दोनों प्रत्याशी अनडिसाइडेड वोटर्स को लुभाने की ही कोशिश करेंगे। बहस से पहले किए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक 44% वोटर इस डिबेट में हिलरी क्लिंटन की जीत की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि सिर्फ 34% का ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप डिबेट के दौरान मजबूत प्रदर्शन करेंगे। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो।
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अब कुछ खबरें भारत से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि सबका साथ सबका विकास सिर्फ नारा नहीं बल्कि उनकी प्रतिबद्धता है। मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के हवाले से कहा कि मुसलमानों को वोट की मंडी का माल नहीं समझा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि सरकार को बताना चाहिए कि लव जिहाद जैसे अभियान क्या संकेत देते हैं। एक रिपोर्ट के साथ निखिल रंजन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कहा कि समाज के आखिरी छोर का व्यक्ति हमारी आराधना का केंद्र होना चाहिए। मोदी ने कहा कि दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, गांव, गरीब और किसान उनके लिए सिर्फ नारे नहीं बल्कि उनका कमिटमेंट है। प्रधानमंत्री ने जनसंघ के नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के हवाले से कहा कि मुसलमानों को घृणा की वस्तु या वोट मंडी का माल नहीं समझा जाना चाहिए।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, मुसलमानों को न पुरस्कृत करें और न ही उनको तिरस्कृत करें, बल्कि उनका परिष्कार करें। मुसलमानों को न वोट की मंडी का माल और न ही कोई घृणा की वस्तु समझे, उसे अपना समझे।
प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि मोदी की बात अच्छी है लेकिन उन्हें बताना चाहिए कि बीते 2.5 साल में क्या हो रहा है। कांग्रेस नेता मीम अफजल ने कहा,
प्रधानमंत्री ने जो बात कही है वो कहने के लिए उनको दीनदयाल जी का सहारा लेना पड़ा। पिछले 2.5 साल में कभी लव जहाद के नाम पर, कभी गौ हत्या के नाम पर, कभी बीफ के नाम पर, जो पूरा कैंपेन उनके लोगों ने चलाया और उनके परिवार के लोगों ने चलाया, क्या अपने आप में ये समझना काफी नहीं है कि वो मुसलमानों को इस मुल्क का सड़ा हुआ माल समझते हैं? तो मुसलमानों को एक वोट की मार्केट का माल समझना, वोट बैंक समझना जितना गलत है, उतना ही मुसलमानों के अंदर रोजाना ऐब निकाल करके उनको कटघरे में खड़ा करना भी उतना ही बुरा है।
मीम अफजल ने यह भी कहा कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने गौ हत्या को लेकर सख्त बयान दिया था, गौ रक्षा के नाम पर गलत काम करने वालों का डॉजियर बनाने को कहा था, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। वहीं राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने चरमपंथ को लेकर पाकिस्तान पर वार किया। उन्होंने उड़ी हमले का जिक्र किया और जम्मू कश्मीर में अलगाववादी आंदोलन के लिए भी पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। अमित शाह ने कहा,
पाकिस्तान आज सरकारी नीति के रूप में आतंकवाद को खुले तौर पर समर्थन दे रहा है और प्रायोजित कर रहा है। भारत बहुत लंबे समय से पाकिस्तान की इस नीति का शिकार रहा है। पिछले 1.5 दशक से भी ज्यादा समय से हमने अनेक बड़े छोटे आतंकी हमले सहे हैं। अभी हाल ही में उरी में हमला हुआ, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में चरमपंथी अलगाववादी आंदोलन को भी पाकिस्तान ने ही बढ़ावा दिया है।
अमित शाह ने यह भी कहा कि उरी हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो देश की सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार के साथ है, लेकिन सरकार को कोई भी कदम सभी को भरोसे में लेकर ही उठाना चाहिए।
प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर विवाद। भारतीय जनता पार्टी की केरल के कोझिकोड में आयोजित राष्ट्रीय परिषद में कई मुद्दे उठे। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ी में हुए चरमपंथी हमले से लेकर पार्टी के विस्तार और भविष्य की योजनाओं पर बात की। इस बैठक के बाद हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप कौशल से बात की और सबसे पहले पूछा कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक से भारतीय जनता पार्टी ने क्या नया संदेश दिया है।
इसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो पूर्व में भाजपा के अध्यक्ष रहे, उनके नाम से ये राष्ट्रीय परिषद हुई है। यूपी से थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो यूपी में महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहे हैं, तो एक संदेश तो यूपी की जनता के लिए था, यूपी के ब्राह्मण समाज के लिए था। दूसरा, अंत्योदय उनके सोच का एक महत्वपूर्ण बिंदु था, सामाजिक भेदभाव को दूर करने की बात हो, कमजोर लोगों के उत्थान के लिए पार्टी अपनी प्रतिबद्धता जताए। आपने देखा होगा कि जो प्रस्ताव भी पास हुआ है उसके अंदर वो भी इन्हीं विचारों पर आधारित है।
मैं बात करना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की। 2 दिन उन्होंने भाषण दिया, पहले दिन उन्होंने पाकिस्तान की जनता से सीधा संवाद किया, दूसरे दिन के भाषण में एक जो बड़ी बात आई वो मुसलमानों को लेकर आई। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को कोट करते हुए कहा कि मुसलमानों को वोट की मंडी नहीं समझना चाहिए। तो ये 2 संदेश 2 दिन जो आए हैं, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं?
पहले चर्चा करते हैं पहले संदेश की। पाकिस्तान को लेकर के बीजेपी बड़ी ऊहापोह की स्थिति में लगी। ये तय करना कठिन था कि भाजपा पाकिस्तान को लेकर के आक्रामक भाषा बोलना चाह रही है या फिर उदार भाषा बोलनी चाह रही है। संघ परिवार के जो लोग हैं उनको घुट्टी मिलती है प्रखर राष्ट्रवाद की। अब उसको कोशिश की गई एक ही सांस में प्रधानमंत्री की तरफ से। उन्होंने आह्वान किया, पाकिस्तान को मैं कहता हूँ लड़ाई लड़ें, तो लोग बड़े उत्साहित हो गए, बहुत ताली लगी कि इसके बाद जो उद्घोष होगा वो युद्ध का होगा। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि युद्ध करें हम बेकारी के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, तो लोग निरुत्साहित भी हुए। प्रधानमंत्री की आपने अगर बॉडी लैंग्वेज देखी हो वो काफी ज्यादा आक्रामक लगी, काफी जोश लगा उसमें। लेकिन जो बातें उन्होंने कही उससे थोड़ी निराशा हुई कि बड़ी नर्म हैं बातें। एक तो ये दुविधा नजर आई। दूसरी बात मुसलमानों की, यूपी में चुनाव है, वहां भी ऊहापोह की स्थिति है। एक तरफ भाजपा चाहती है कि ध्रुवीकरण हो ताकि हिंदू पूरा का पूरा उनके पक्ष में लामबद्ध हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ शायद ये भी चिंता है इनको, मुसलमान जो बहुत महत्वपूर्ण वोटर है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका ध्रुवीकरण होगा पार्टी के विरुद्ध, तो उसको रोकने के लिए मुसलमान के प्रति थोड़ा उदार दिखाई दें। और ये दोनों विषयों को लेकर के मैं ऐसा मानता हूँ कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो कंफ्यूज लग रही थी, नेतृत्व कंफ्यूज लग रहा था।
ये थे राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप कौशल। ये बीबीसी है, आप नमस्कार भारत सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। आइए देखते हैं भारतीय समाचार पत्रों में किन खबरों की चर्चा है। समाचार पत्रों पर नजर दौड़ा रही हैं मानसी दास।
रेहान जी, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात करें और उनके बयान अखबारों की सुर्खियां ना बने, ऐसा नहीं हो सकता। अधिकतर अखबारों ने आज उनके बयानों को पहले पन्ने पर जगह दी है। श्रोताओं को कुछ हेडलाइंस बता दूं। दैनिक जागरण ने लिखा है, देश में साल 1965 जैसा गुस्सा है। जनसत्ता ने लिखा है, पाक है नापाक, सेना बोलती नहीं पराक्रम दिखाती है। दैनिक भास्कर ने छापा है, सबका साथ सबका विकास महज नारा नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है। पायोनियर ने लिखा, बीजेपी के लिए सभी अपने हैं। दी स्टेट्समैन ने लिखा, मुसलमानों को बराबरी का दर्जा दें, ये मोदी ने कहा है। अब विस्तार से अन्य खबरें बता दूं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है कि 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन भारत जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते का अनुमोदन करेगा। भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मोदी ने कहा कि पेरिस समझौते के संबंध में एक काम बच गया है, भारत को अभी समझौते का अनुमोदन करना बाकी है। जनसत्ता में छपी एक खबर के अनुसार राजस्थान के जैसलमेर में एक थाना है जहां पिछले 23 सालों में मात्र 55 केस दर्ज हुए हैं। पाकिस्तान की सीमा से सटे शाहगढ़ थाने को पिछले 23 सालों में एक हेड कांस्टेबल ने संभाला है और अब जाकर यहां एक थानेदार की नियुक्ति हुई है। इस थाने के अंतर्गत 2 पंचायत के 10,000 की आबादी आती है। साल 2015 में यहां केवल 2 ही मामले दर्ज हुए हैं और वो भी सड़क दुर्घटना के। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर के अनुसार बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहिम के एक फैन उनसे इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने चोरी और मादक पदार्थों के धंधे में शामिल वो उसमें शामिल हो गए। अखबार के अनुसार 20 साल के अमन जॉन के फैन हैं और फिल्म शूटआउट एट वडाला में जॉन के किरदार से वे इतने प्रभावित थे और अपना गैंग बनाना चाहते थे कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ी और एक गैंग में शामिल हो गए। और इसमें शामिल होने के बाद उन्होंने चोरी और मादक पदार्थों का धंधा किया। पिछले 6 महीनों में दिल्ली में उन्होंने 12 से अधिक चोरियाँ की है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका मानसी। एक खबर और लेते हैं। महाराष्ट्र में चल रहे मराठा मोर्चा के सिलसिले के तहत कल 3 विशाल मोर्चे आयोजित किए गए। पश्चिम महाराष्ट्र में पुणे और विदर्भ के यवतमाल और वाशिम में साइलेंट मार्च आयोजित किए गए जिनमें लाखों लोग शरीक हुए। अहमदनगर के कोपरडी इलाके में एक मराठा लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले के बाद 9 अगस्त से ये सिलसिला शुरू हुआ था। पुणे के मूक मोर्चे में अनुमान के मुताबिक करीब 10 से 15 लाख लोग शरीक हुए जिनमें महिलाएं भी बड़ी तादाद में थीं। पूरा ब्यौरा सुनिए संजय तिवारी से।
लाखों अनजान लोगों की भीड़ में शुभांगी साकोरे अपनी सहेली सुप्रिया साकोरे के साथ मोर्चे में शामिल थीं। दोनों ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिग्री ली है। शुभांगी साकोरे का कहना है कि मराठा रिजर्वेशन और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार दोनों मुद्दे अहम हैं।
हमारी मांग इतनी है कि हमें मराठा आरक्षण मिले और जो मतलब हम शिक्षण लेते हैं या जहाँ पे भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाते हैं वहाँ पे भी हमें आरक्षण मिल जाए, यही मेन मतलब हमारी इच्छा है। जो भी घटना हुई है कोपरडी में तो उसके और एक मुद्दा और मराठा आरक्षण, तो दोनों को साथ में लेके हम आंदोलन कर रहे हैं। हमने जो मतलब महसूस किया है अभी तक इंजीनियरिंग की पढ़ाई में कि हमें आरक्षण नहीं मिल रहा, फीस भी बहुत होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर कास्ट, तो वो भी कम होनी चाहिए, तो वो मराठा आरक्षण मिलना चाहिए, यही हमारी मेन मांग।
इस मूक मोर्चे में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, पुणे के टेलीकॉम व्यवसायी सुनील जगदाले पत्नी एक बेटा और 2 बेटियों के साथ दिखाई दिए। वो मराठा लोगों के लिए आरक्षण को जरूरी बताते हुए कहते हैं,
ये जो अभी आया हुआ है ये मराठा मुख्य मोर्चा जिसको बोला जा रहा है, ये अलग अलग सब विषयों पे आया हुआ है जिसमें मैं चाहता हूँ कि आरक्षण के बारे में मैं यहाँ पे जमा हूँ। इस साल में मेरी बड़ी बेटी के लिए मैं एडमिशन के लिए ट्राई कर रहा था, 89% रह के भी मेरी बेटी को एडमिशन नहीं मिल रहा था क्योंकि कारण से सिर्फ और सिर्फ ओपन, बस मेरी जात मराठा है इसलिए मेरे एडमिशन। एक बात क्लियर है सर कि मेरा गुस्सा किसी पे नहीं है, मेरा गुस्सा किसी पे नहीं है, मेरा गुस्सा मेरे पे आ रहा है खुद पे कि मैंने क्या किया गलती या मेरे बच्चों ने क्या किया।
रविवार सुबह पुणे जिले के कोने कोने से आकर लोग मराठा मोर्चे में शामिल हुए, इनमें बुजुर्ग थे और स्कूली छात्राएं भी। इस मूक मोर्चे में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, सांसद और विधायक भी शामिल हुए। स्कूली छात्राओं के हाथों जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने के बाद मोर्चे का समापन राष्ट्रगान से हुआ। उधर मुंबई में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग से सहमति जताई और मोर्चे के जिला स्तरीय आयोजकों से गुजारिश की कि वे राज्य सरकार से चर्चा करने आगे आएं। बीबीसी हिंदी के लिए पुणे से संजय रमाकांत तिवारी।
पुणे में मराठा प्रदर्शन, आज सोमवार है और आज के दिन आप सुनते हैं पाकिस्तान डायरी। हमेशा की तरह इसे भेजा है वसतुल्लाह खान ने।
दुनिया में सबसे लंबी नाक किसकी? जाहिर है इंडिया और पाकिस्तान की। दुनिया में कहीं और कोई ऐसी मिसाल है कि इंडिया और पाकिस्तान दुनिया की दूसरी और सातवीं सबसे बड़ी सेना इसलिए रखते हैं ताकि इस विश्व के 25% गरीबों की रक्षा कर सकें, और ये रक्षा इतनी कीमती है कि उसके लिए असलाह खरीदने वाला पहला और 10वां बड़ा देश बनना और एटम बमों के ढेर लगाना भी कोई महंगा सौदा नहीं। पीछे वही सोच कि बाहुबली का सर कट जाए पर नाक ना कटे। पश्चिमी देश तो परमाणु युद्ध से इसलिए डरते हैं कि एक भी एटम बम चल गया तो 10-15 लाख तालीम याफ्ता लोग पहले ही हल्ले में मर जाएंगे। पर हमें क्या आपत्ति, अगर दिल्ली से कोई बम चले या लाहौर से कोई एटमी मिसाइल उड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 40-50 लाख बेरोज़गार या भूखे नंगे ही तो ये धरती खाली करेंगे। इनका वैसे भी मरना क्या और जीना क्या। इसलिए जब कोई जीनियस प्राइम टाइम एंकर मुंबई के किसी एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठ के TRP के लॉन्चर में अपनी जीप का मिसाइल रख के चलाता है कि चढ़ दौड़ो राम भली करेगा, या इस्लामाबाद की किसी बैठक में कोई फारिग किस्म का मंत्री या टकला बुद्धिजीवी कहता है कि हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी उड़ा देंगे, तो पीछे यही तो सोच होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। 40-50 लाख हद करोड़ कीड़े मकोड़े जैसे जीवत ही तो ख़त्म होंगे, 10 वर्ष में फिर इससे ज़्यादा पैदा हो जाएंगे। ऐसे में जब मेरी नज़र टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग पे पड़ती है तो यकीन हो जाता है कि हम जैसों का सारा जोर इस पे है कि किस तरह दूसरे की नाक एक बार फिर से रगड़ दी जाए। इससे फुर्सत मिले तो सोचें कि जिस उपमहाद्वीप में इस विश्व के 25% यानी 2.25 अरब इंसान बसते हैं उसकी हालत ये है कि विश्व की टॉप 200 यूनिवर्सिटियों में यहाँ की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं, और विश्व की टॉप 1000 यूनिवर्सिटियों में सार्क के 8 में से सिर्फ 3 देशों के नाम हैं, यानी श्रीलंका की सिर्फ 1, पाकिस्तान की 7 और भारत की 31 यूनिवर्सिटियाँ। हाँ, कोई 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों की मृत्यु, सेहत और शिक्षा की सबसे कम तरीन सुविधाओं, आतंकवाद, रेप, अल्पसंख्यकों से सलूक, करप्शन, भाई भतीजावाद, जातिवाद, गुंडा राज, नॉन स्टेट एक्टिंग में हमारी टॉप 10, टॉप 20 वर्ल्ड रैंकिंग तक पहुंच के दिखाए तो माने। इसलिए टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग जैसे तमाशों से दुखद होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जब हम एक दूसरे से निपट लेंगे तो शिक्षा, बीमारी, रोज़गार जैसे मामूली मुद्दों से भी निपटारे पर ध्यान दे लेंगे। दुनिया को हमारे लिए चिंतित होने या टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर टाइम्स हायर एजुकेशन जैसी रिपोर्टों ने ज़्यादा तंग करने की कोशिश की तो फिर सुन लो, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, शिक्षा मांगोगे तो चीर देंगे।
ये थे पाकिस्तान से वसतुल्लाह खान। हफ्ते भर के दौरान खेल की दुनिया में क्या कुछ हुआ बता रहे हैं हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी में।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत क्रिकेट से। कानपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां न्यूजीलैंड आज हार से बचने के लिए मैदान पर उतरेगा। न्यूजीलैंड के सामने कल भारत ने जीत के लिए 434 रनों का लक्ष्य रखा, और कल जब चौथे दिन का खेल समाप्त हुआ तब उसका स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 93 रन था। स्टंप के समय ल्यूक रोंकी 38 और मिचेल सेंटनर 8 रन बनाकर खेल रहे थे। न्यूजीलैंड को जीत के लिए अभी भी 341 रनों की जरूरत है और उसके 6 विकेट बाकी हैं। न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में गिरे 4 विकेट में से 3 विकेट आर अश्विन ने झटके। इसके साथ ही उन्होंने अपने टेस्ट करियर के 200 विकेट भी पूरे किए। ये कारनामा उन्होंने अपने 37वें टेस्ट मैच में पूरा किया। इससे पहले उन्होंने 193 टेस्ट विकेट लिए थे, लेकिन कानपुर में उन्होंने इस टेस्ट मैच की पहली पारी में भी 4 विकेट हासिल किए थे। दूसरी पारी में उनके शिकार बने बल्लेबाजों में टॉम लेथम 2, मार्टिन गप्टिल बिना कोई रन बनाए और कप्तान केन विलियमसन 25 रन बनाकर आउट हुए। मैच समाप्त होने के बाद आर अश्विन अपनी कामयाबी से खुश तो थे, लेकिन उन्होंने माना कि अभी भी टीम को जीत के लिए 6 विकेट की जरूरत है।
अभी भी गेम खत्म नहीं हुई सर, सो वी आर नॉट जंपिंग टू एनी कंक्लूजंस एंड टू द फैक्ट दैट वी हैव 6 मोर विकेट्स टू गो एंड वी हैव टू टेक इट वन एट अ टाइम। आई एम हियर नॉट टू रिलीश अ विक्ट्री ऑलरेडी, आई एम हियर बिकॉज़ आई हैव गॉट 200 विकेट्स।
इससे पहले कल भारत ने अपनी दूसरी पारी 5 विकेट पर 377 रन के स्कोर पर समाप्त घोषित की। मुरली विजय ने 76, चेतेश्वर पुजारा ने 78 और अजिंक्य रहाणे ने 40 रन बनाए। रोहित शर्मा 68 और रविंद्र जडेजा 50 रन बनाकर नाबाद रहे। न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर ने 79 रन देकर 2 और ईश सोडी ने भी 99 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। रविंद्र जडेजा ने दूसरी पारी में नाबाद 8 शतक जमाया तो पहली पारी में उन्होंने न्यूजीलैंड के 5 विकेट भी झटके थे। उन्होंने बातों ही बातों में बताया कि आर अश्विन के साथ वो किस आज़ादी से गेंदबाजी करते हैं और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज क्यों घबराए कानपुर के विकेट से।
नहीं, आज़ादी तो मुझे थी, 6 बॉल तो मुझे डालने ही थे, बट कहीं ना कहीं तो ऐसा लग रहा था कि एक पार्टनरशिप होती है तो उसके बाद नया बैट्समैन कोई भी जाएगा उसके लिए इतना फुटमार्क्स देख के उधर ही उन थोड़ा घबरा जाएंगे कि इतने फुटमार्क्स सामने हैं तो वो एकदम ही कॉन्फिडेंसली डिफेंस नहीं कर पाएंगे, तो वही था।
अब देखना है कि न्यूजीलैंड के बचे हुए बल्लेबाज कितनी देर तक भारतीय गेंदबाजों को जीत से दूर रख पाते हैं। और अब बात हॉकी की। बीते रियो ओलंपिक में 8वें स्थान पर रहने के बाद अब भारतीय हॉकी टीम ने अगले महीने मलेशिया में होने वाली एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी शुरू कर दी है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के अलावा मेजबान मलेशिया, पाकिस्तान, कोरिया, जापान और चीन हिस्सा लेंगे। उल्लेखनीय है कि रियो में भारतीय हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम से 3-1 से हारकर बाहर हो गई थी, जबकि इससे पहले भारत ने इंग्लैंड में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी में रजत पदक जीतकर सबको भरोसा दिलाया था कि अब यूरोपियन टीमों के खिलाफ उसका प्रदर्शन चमकदार रहेगा। खैर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब भारत अपनी किन कमियों पर ध्यान दे, इसे लेकर भारत के पूर्व ओलंपियन हरबिंदर सिंह कहते हैं।
सबसे बड़ी कमी गोल करने की। ये देखिए, इस ओलंपिक्स में अगर देखा जाए तो लीग में हमने 9 गोल किए जिसमें 7 गोल हमारे डिफेंडर्स ने किए और 2 सिर्फ फॉरवर्ड ने किए और 1 जो क्वार्टर फाइनल में गोल हुआ है वो 3-1 में फॉरवर्ड ने किया। तो मतलब इतने बड़े टूर्नामेंट में अगर देखा जाए तो पूरे टूर्नामेंट में फॉरवर्ड 3 गोल करते हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी कमी तो यही है, ये हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। बाकी पेनल्टी कॉर्नर को इम्प्रूव करना पड़ेगा, पेनल्टी कॉर्नर उनको कम से कम देने चाहिए और बाकी जो मेन कमी है लास्ट मोमेंट पर गोल कंसीड करना, वो अभी तक प्रसिस्ट कर रही है, उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा।
उधर कोलंबो में खेले गए 4th और आखिरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने मेजबान श्रीलंकाई महिला टीम को 137 रनों से करारी मात दी। ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने अपनी सलामी बल्लेबाज निकोले बोल्टन की 113 रनों की शतकीय पारी की मदद से निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट खोकर 268 रन बनाए। जवाब में श्रीलंकाई महिला टीम 45.5 ओवर में 131 रनों पर ढेर हो गई। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने 4 एक दिवसीय मैचों की सीरीज एक तरफा रूप से 4-0 से अपने नाम की। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों में प्रचार के दौरान कई बार एक दूसरे पर आरोप लगा चुके रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलरी क्लिंटन पहली बार आमने सामने होंगे। स्वीडन की पुलिस का कहना है कि माल्मो शहर में एक गोलीबारी की घटना में 4 लोग जख्मी हुए हैं। सोमालिया के विदेश मंत्री अब्देसलाम हादलिए ने कहा है कि सोमाली सेना और अफ्रीकी संघ की शांति सेना के संयोजित सैन्य कार्रवाई ने इस्लामी चरमपंथी समूह अल शबाब को हरा दिया है। संयुक्त राष्ट्र के लिए अमरीकी राजदूत सैमंथा पावर ने कहा है कि सीरिया में रूस की कार्रवाई चरमपंथ विरोधी लड़ाई नहीं बल्कि बर्बरता है। हंगरी में पुलिस का कहना है कि बीते शनिवार रात को बुडापेस्ट में हुए धमाके में बने जिस बम का इस्तेमाल किया गया था वो घर में बना था। इस धमाके में 2 पुलिस अधिकारी घायल हो गए थे। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत को यहीं विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान, रेहान फतल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।